सो आप लोग जब थोड़ा आगे आते हैं तो इतना बोलना क्यों शुरू कर देते हैं? मौका मिलना चाहिए। सो भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं संजात संजायते कामा, कि आप जैसा संग करते हो आपका मन वैसा ही बन जाता है ना। जिस तरह का, और आपने कहावत भी सुनी है, जैसा रंग जैसा संग वैसा रंग, है ना। और व्यक्ति की पहचान भी वो किस तरह का संग कर रहा है उससे होगी। जो शराबी है वो शराबियों के साथ में रहेगा, जो व्यभिचारी है वो व्यभिचारियों के साथ रहेगा, जो भक्त है वो भक्त के साथ रहेगा। तो जिस तरह का व्यक्ति संग करता है, लोगों को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति का चरित्र कैसा है, ये व्यक्ति की सोच कैसी है, क्या किस तरह से अपना जीवन बिता रहा है। और जितना वो उस संग को करता जाएगा उतना उसके अंदर और भी उसी तरह के भाव और भी गहरे होते जाएंगे, है ना। सो इसीलिए भगवान कह रहे हैं संजात संजायते कामा, कि जैसे जैसे आप जैसा संग करोगे आपके मन में वैसे ही भाव आने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह का संग किया जाए, उससे हमारा चरित्र निर्धारित होगा, हमारा भविष्य निर्धारित होगा। जैसे छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो छात्रों के साथ अध्यापकों का संग करते हैं। जो कौन है, विराट कोहली, जो विराट कोहली को देखता है उसके नंबर कम आते हैं, है ना। सो जिस तरह का संग करेगा व्यक्ति वैसा ही उसका आगे का भविष्य भी निर्धारित हो जाएगा, वैसा ही उसके मन में विचार आने शुरू होंगे, और जैसा उसके मन में विचार आएंगे वैसा ही वो कार्य करेगा। अगर किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष है और वो उस द्वेष को हटाता नहीं है, तो समय की बात है, कभी ना कभी उसके मुंह से बात निकल ही आएगी, कभी ना कभी बोल देगा यार देखो उसने ऐसा किया मेरे साथ, बहुत बुरा आदमी है। और वो बार बार बोलता रहेगा तो कभी कभी ना कभी बदले की भावना से कुछ ना कुछ कार्य भी कर देगा, है ना। तो ये सीढ़ी है, जैसा हमने संग किया वैसे हमारे मन में विचार आए, जैसे हमारे मन में विचार आते रहे हमने वैसा बोलना शुरू कर दिया, और जैसा हमने बोल रहे हैं बार बार वैसा हमने काम भी करना शुरू कर दिया, और जैसा काम करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा, जो बोएंगे वही काटेंगे, है ना। वो क्या कहावत है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, है ना। बबूल का पेड़ अगर बो रहे हैं तो कांटे ही मिलेंगे, आम कहाँ से मिलेगा। आम चाहिए तो आम का बीज बोना पड़ेगा। सो और हम लोग जो व्यक्ति संग क्यों करता है, एक तो चलो उसमें वैसे विचार आते हैं उसको अच्छा लगता है वैसा संग करना, दूसरा ऐसे संग से अपने जैसे लोगों के साथ रहने से उसमें सुरक्षा की भावना भी आती है ना। कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ बीमार हो गए या कुछ भी बात है, कोई मदद चाहिए, कुछ सुझाव चाहिए, तो जाके उन जो जिन लोगों के साथ उठता बैठता है व्यक्ति उनसे जाके मिल सकता है, उनसे सलाह मशवरा कर सकता है, उनसे सहायता ले सकता है। तो हम आपस में मिलजुल के जो लोग समाज में रहते हैं उससे सुरक्षा की भावना बढ़ती है, लोग एक दूसरे के काम आते हैं। हम लोग बचपन से ही ये काम करते आ रहे हैं, हम लोग है ना, बचपन से ही हम एक दूसरे के साथ मिलके, बोलते हैं ना पड़ोसी के साथ मिलके रहो, रिश्तेदारों से भी ज़्यादा पड़ोसी का महत्व बोला जाता है। एकदम कुछ प्रॉब्लम हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई रिश्तेदार पंजाब बैठा है, कुछ कलकत्ता बैठा है, कोई बिहार बैठा है, कैसे आएगा एकदम से? एकदम से तो जो आपके बिल्कुल पास रहता है 5-10-15 मिनट में तो वही व्यक्ति पहुंचेगा ना, रिश्तेदार थोड़े ना पहुंचेगा। तो लोग रिश्तेदारों से भी ज़्यादा पड़ोसी को महत्व देते हैं, क्योंकि उससे सहायता मिलने की संभावना और भी ज़्यादा रहती है उससे। तो रिश्तेदार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे पड़ोसी। क्यों? क्योंकि वो हमारे ज़्यादा काम आएंगे, हम उनके काम आएंगे, वो हमारे काम आएंगे। इसी प्रकार से हम आदान प्रदान से सुरक्षा का अनुभव करते हैं और पूरा जीवन बिताते हैं। कभी त्यौहार आते हैं तो त्यौहारों पे हम रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं, रिश्तेदारों के घर जाते हैं मजबूरी में, जाना पड़ता नहीं, लेकिन पड़ोसी के घर जाते हैं हम बिल्कुल खुशी से, क्योंकि पूरा साल उसने हमारी सहायता की है, पूरा साल हम उसके साथ रहे हैं। तो जब भी कोई त्यौहार आता है, घर में कुछ फंक्शन है, तो हम लोग अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ में उनको हम गिफ्ट देते हैं, उनसे गिफ्ट लेते हैं, उनको अपने घर पे बुलाते हैं खाने पे, उनके घर खाने के लिए जाते हैं। कुछ भी हमें दुख हो तकलीफ हो हम उसको बताते हैं, उसको कुछ दुख तकलीफ हो वो आके हमें बताता है तो हम क्या बोलते हैं? नहीं नहीं हम नहीं सुनेंगे, हम भी सुनते हैं, है ना। तो हम मुख्यतः क्या काम कर रहे हैं? हम अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, नहीं, इसको बोलते हैं ददाती, देना। और वो अगर हमें कुछ गिफ्ट दें, कुछ उपहार दें, तो हम उसे स्वीकार करते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिग्रहणाति। हम उसको उसके घर जाके हम लोग भोजन करते हैं, हाँ, इसको बोलते हैं भुंकते संस्कृत में। और उसको अपने घर पे बुलाते हैं तो उसको बोलते हैं भोज्यते। उसको हम अपना दुख बता रहे हैं, हाँ, और अपना मन के जो बहुत ही गहरे रहस्य हैं हम उसको बताते हैं अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, उसको बोलते हैं गुह्यम आख्याति। आख्याति मतलब बोलना और गुह्यम मतलब गहरा रहस्य, है ना, गुह्यम आख्याति। और जब वो हमें कुछ बताता है तो हम उसकी बात सुनते हैं। वो बात अलग है कि जो माताएं हैं वो सुन के फटाफट टेलीफोन करके दूसरे को बता देती हैं, नहीं, तो अगर कोई दूसरा हमें अपनी बात बोलता है हम सुनते हैं तो उसको बोलते हैं गुह्यम प्रच्छति, के किसी ने अपने हृदय की बात हमसे बोली और हमने सुनी वो बात। सो हमारे एक बहुत बड़े साधु महात्मा हुए हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के बिल्कुल जो है, चैतन्य महाप्रभु ने उनको दीक्षा दिया था, उनका नाम है श्रील रूपा गोस्वामी। श्रील शब्द हम लगाते हैं, श्री शब्द लगाते हैं कोई सम्मानित व्यक्ति के लिए, और श्रील, श्री के पीछे ल लगा दिया अगर तो श्रील शब्द हम प्रयोग करते हैं बहुत ही ज़्यादा कोई सम्मानित व्यक्ति हो। तो ऐसा नहीं हम हर किसी को श्रील कह के बुलाना शुरू करते हैं, सिर्फ जो साधु महात्मा हैं, बहुत बड़े बड़े जो आचार्य हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए हम श्रील शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एक बहुत ही महान आचार्य हुए हैं हमारे संप्रदाय में, शीला रूपा गोस्वामी। तो शीला रूपा गोस्वामी ने हमें बताया कि आप सुरक्षित कैसे अनुभव कर सकते हो, किस प्रकार आप अपने इर्द गिर्द सुरक्षा का घेरा बना सकते हो। और उन्होंने कहा कि आपको ये कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, आप करते आ रहे हो बचपन से, आपको अच्छी तरह से पता है। तो उन्होंने बताया कि ददाति प्रतिघ्रणाति, ददाति मतलब देना, प्रतिघ्रणाति मतलब स्वीकार करना। ददाति प्रतिघ्रणाति गुह्यम आख्याति प्रच्छति, और रहस्य की बात बताना और रहस्य की बात सुनना। ददाति प्रतिघ्रणाति दो हो गए, तीसरा गुह्यम आख्याति और चौथा प्रच्छति, गुह्यम प्रच्छति। गुह्यम शब्द दोनों के लिए कॉमन है, गुह्यम आख्याति गुह्यम प्रच्छति। और फिर पांचवा क्या है, खाना, भुंगते भुंगते, ये हो गया पांचवा। और छठा क्या है, भोज्यते। तो रूपा गोस्वामी ने बोला ददाति प्रति गणाति गुह्यम आख्याति प्रच्छति भुंगते भोज्यते चैव षट विधम प्रीति लक्षणम। जो प्रीति है, आपस में गाढ़े संबंध है, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता चलेगा जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ ये जो छह संबंध है, इन छह संबंधों का आदान प्रदान करेगा। ठीक है ना, यहां तक बात? किसी को कुछ नहीं समझ में आ रही, हम दोबारा बोल देंगे। लेकिन समस्या क्या है कि हम अपने आसपास जितने लोग हैं समाज में, हम उनके साथ ये छहों के छहों काम कर रहे हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही है हमें, मन में सुख का अनुभव नहीं हो रहा हमें। और अगर किसी को अच्छा लग भी रहा है तो उसको उसका कुछ स्थायी लाभ नहीं मिल रहा उसको। वो व्यक्ति एक बार बोला बात, खासकर अगर किसी ने कोई रहस्य की बात किसी को बताई तो उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसका कुछ खास लाभ नहीं होता। और कभी मुंह से निकल जाए किसी और को तो आपस में झगड़ा भी हो जाता है, नहीं तूने बताया होगा, वो कहेगा नहीं मैंने नहीं बताया, मैंने तो सिर्फ तुझे ही बताया था, तूने बताया होगा, आपस में झगड़ा हो जाता है। इस चक्कर में इसको क्या बोलते हैं, चुगली, है ना, चुगली करना। सो कुछ खास हमें फायदा नहीं हो पाता इस कारण, इस ये जो हम छह कार्य समाज के लोगों के साथ कर रहे हैं। इसीलिए रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि आप ये जो छह कार्य हैं जो आप समाज के लोगों के साथ कर रहे हो, क्यों नहीं आप ये छह के छह कार्य आप भक्तों के साथ करो। नहीं, काम बदलने नहीं है, पहले आप एक व्यक्ति के साथ ऐसे संबंध बना के चल रहे थे, अब आप वही संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ स्थापित कर लो, बस। ऐसा नहीं है कि आपको अपना व्यवहार बदलना है, व्यवहार वही रहेगा, व्यवहार में कुछ बदलाव नहीं लाना। सिर्फ आप पहले कुछ लोगों के साथ कर रहे थे, अब उन लोगों को छोड़कर दूसरे कुछ लोगों के साथ में वो संबंध स्थापित कर लो, वो छह कार्य आप उन लोगों के साथ भक्तों के साथ करना शुरू कर दो। भक्तों को खिलाने और भक्तों को अपने घर में, भक्तों के घर जाकर खाने में क्या फायदा है? अगर हम किसी अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं जो भक्त नहीं है, आजकल तो बहुत खराब हालत है, एक वो तीन चार वो डोंगे ले आते हैं, वो जो बड़ी बड़ी कटोरियाँ, एक में चने हैं, कुछ में काजू अगर किसी ने खिला दिए, और तीन चार पांच आइटम में ले आएंगे, नमकीन है, हाँ सब लोग उसी में से हाथ डाल के खाए जा रहे हैं, एक दूसरे का झूठा। कोई सोच नहीं रहा कि जैसे ही पहली बार किसी ने खाया तो वो झूठा हो गया, खाए जा रहे हैं उसको। कल मैं वृंदावन में था अपने किसी रिश्तेदारों के साथ, बहुत तकलीफ में समय निकाला मैंने, वो बाप बेटा थे, एक ही थाली में खाए जा रहे हैं वो, और लास्ट में तो हद कर दी, जो लड़का है उसने वो लास्ट का कौर मुंह में डाला, थोड़ा बड़ा था टुकड़ा, आधा काटा, कह रहा बस पेट भर गया, आधा रख दिया, उसके पिता ने उठाया खा लिया। बड़ी मुश्किल से मैंने उल्टी रोकी, उल्टी कर दूं वहीं पर, इतनी मतलब खराब हालत था। और लोगों को कुछ इस बारे में लोग सोचते भी नहीं, कि क्या कर रहे हैं, मतलब चलो आप अकेले में अंधेरे कमरा अंधेरा करके खा लो, कोई नहीं देख रहा, छह लोग देख रहे हैं उनके सामने, मतलब किए जा रहे हैं ऐसा, क्या कितना अजीब लगता है। ऐसे झूठा खाने से आपस में कर्म ट्रांसफर हो जाते हैं। कोई व्यक्ति बहुत ही दुष्ट है, पापी है, आप उसका झूठा खा लोगे उसके पाप ट्रांसफर हो जाएंगे, भोगने पड़ेंगे। झूठा नहीं खाना चाहिए। ये जितने शादी ब्याह हैं सब में वो डोंगे लगा देते हैं बड़े बड़े वो स्टील के, हाँ, और दे झूठे पे झूठा लोग खाए जा रहे हैं। फिर लोग सोचते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। अरे तूने वो डोंगे से शाही पनीर खाया नहीं था क्या, वो उसमें कितने लोगों का झूठा था, वो सारे कर्म कहाँ गए, वो सारे कर्म तेरे पास ट्रांसफर हो गए, इसलिए तू भोग रहा है। लोग पैर छुआते हैं अपने, पैर छूने से आपके अच्छे जो कर्म ट्रांसफर हो जाएंगे और उसके बुरे कर्म आप में आ जाएंगे। एक बार एक बहुत अच्छे साधु हैं, तो एक व्यक्ति ने उनके पैर छुए, पैर छूते उसकी तबीयत खराब हो गई, कह रहा है पता नहीं कैसे पैर छुए मेरी तबीयत ही खराब कर दी, सारे पाप ट्रांसफर कर दिए मुझे। तो ऐसे पैर छुआना अच्छा लगता है, देखो मैं बड़ा ये छोटा, पैर छूना, मेरे पैर छूना, पैर अपने पैर छुआना बहुत जिम्मेदारी, बहुत भारी जिम्मेदारी का काम है। ऐसे नहीं कि अपने पैर हवा में लटका दो, आओ भैया छू के चले जाओ, बहुत ताकत चाहिए उसके लिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी कोई भी आए पैर छू के चलता बने। इसीलिए प्रभुपाद ने भी मना किया था कि मेरे पैरों को मत छुआ करो, सिर्फ कुछ गिने चुने लोग थे जो उनके पैर छू सकते थे। साधु के पैर छूना बहुत बड़ी बात है, अगर कोई साधु अपने पैर छूने दे तो समझो आप बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन जबरदस्ती नहीं अपने आप को भाग्यशाली बनाना चाहिए, आज तो छू के रहेंगे। ऐसे नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, साधु की परमिशन, उसकी आज्ञा लेके जो है। और वो परमिशन कब देगा साधु, साधु आज्ञा तब देगा जब वो आपसे प्रसन्न होगा। और साधु आपसे प्रसन्न कब होगा, जब हम साधु का कहना मानेंगे, है कि नहीं। ऐसा थोड़े ना कि वैसे तो जो है उसकी पीठ में छुरा मारते रहो और सामने आ जाए, ओ महाराज साधु साधु महात्मा महाराज, पैर छूते रहो और उसके पीछे घूमते ही अपने मस्त हो जाओ अपने कामों में। सो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि जो ये छह काम आप समाज के लोगों के साथ कर रहे हो, वो छह के छह काम आप भक्तों के समाज में करो। जब आप भक्त के घर खाना जाएंगे तो आपको वो झूठा नहीं खिलाएगा अपना, वो आपको झूठा खिलाएगा भगवान का। भगवान को भोग लगा के जब वो आपको खाना खिलाएगा तो वो खाना प्रसाद बन चुका होगा। जब आप उस प्रसाद को खाएंगे तो आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। जब हम रिश्तेदार के घर जाएंगे, वो जब हमें बिना भोग के खाना खिलाएगा, वो चाहे कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, वो हमें आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उस भोजन में, उस अन्न में भगवान की कृपा शामिल नहीं है। इसी प्रकार जब कोई हमारे घर आएगा तो हम भी उसको भगवान को भोग लगा के भोजन कराएंगे, तो उसको भी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। और जब दो भक्त आपस में मिलेंगे तो वो एक दूसरे से पूछेंगे कि आप मुझे बताओ मैं कृष्ण भक्ति और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ, तो दूसरा व्यक्ति उसको बहुत ही रहस्यमय बात बताएगा। देखो अगर बैठ के जप करते समय नींद आ रही है तो चल के जप कर लो, थोड़ा टहलते हुए जप कर लो। अगर बहुत ज़्यादा थके हुए हो तो 10 मिनट रेस्ट कर लो, आधा घंटा रेस्ट कर लो, उसके बाद जप कर लो। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, क्या समझ नहीं आ रही, जैसे पद्म पुराण में क्वेश्चन है, पद्म पुराण में प्रश्न पूछा ययाति महाराज, ययाति, प्रभु फोन स्विच ऑफ कर लो प्लीज, पद्म पुराण में ययाति महाराज ने इंद्र के दूत, इंद्र का दूत था उसका वो सारथी भी है, इंद्र का सारथी कौन है, कौन है, सूरज, हाँ मालती, मातली, मातली, हाँ मातली, हाँ सो मातली जो है इंद्र ने भेजा मातली को ययाति महाराज से मिलने के लिए। तो ययाति महाराज ने उनसे पूछा और बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि कोई व्यक्ति अपने शरीर से ही अच्छा काम करता है, नहीं? अगर आपको कुछ काम करना है, आप आत्मा हो शरीर नहीं हो, लेकिन अगर आपको काम करना है तो कैसे करोगे, शरीर से ही करेंगे, है ना। अगर आपने जप करना है तो उंगलियां, शरीर, मुंह, जबान, कान, सब काम आएंगे ना उसमें, है कि नहीं। सो उसने, महाराज ययाति ने पूछा कि आत्मा जो भी अच्छे काम करती है वो शरीर के माध्यम से करती है, तो फिर ऐसा क्यों है कि जब वो स्वर्ग लोकों को जाती है तो ये शरीर छोड़ के चली जाती है। जिस शरीर के माध्यम से सारे अच्छे काम किए वो शरीर ही यहाँ पे छोड़ के चले गए, ऐसा कैसे है, ये प्रश्न जायज है कि नहीं है, इसका उत्तर क्या है। देखो कितना गहरा प्रश्न है ये, आप लोग, हम लोग ये प्रश्न सोच भी नहीं सकते, लेकिन महाराज ययाति ने सोच लिया ये प्रश्न, नहीं कि इस शरीर से ही हमने कार्य किया तो मतलब इस शरीर का भी योगदान है, तो फिर ऐसा कैसे है कि जब हम स्वर्ग लोक गए तो ये यहीं पे छूट गया। तो मातली ने कहा कि बुरे काम भी तो शरीर से किए, बुरे काम भी इस शरीर से ही किए, और जब ये, जब नरक लोग गए तो ये शरीर साथ लेके गए, तो भी तो ये शरीर यहीं छोड़ दिया, तो क्यों ऐसा क्यों हुआ, है कि नहीं है ये प्रश्न, अच्छा प्रश्न है कि बुरा प्रश्न है। सो मातली ने इसके दो उत्तर दिए, दो कारण बताए इसके मातली ने उसे महाराज ययाति को। पहला कारण उन्होंने बताया कि देखो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्मा का शरीर से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, शरीर मृतक है और मृतक रहेगा। जैसे गर्भ में बच्चा है, अगर वो गर्भ में बच्चा बढ़ रहा है इसका मतलब आत्मा है, अगर आत्मा निकल जाए तो वो बच्चा बढ़ना बंद हो जाता है। तो शरीर का अपने आप में कुछ, उसमें चेतना नहीं है, कुछ अस्तित्व नहीं है, वो पंचभूत से बना हुआ है, पंचभूत में मिल जाएगा। तो क्योंकि शरीर का आत्मा से कोई संपर्क, कोई संबंध नहीं है, इसीलिए जब आत्मा ऊंचे या नीचे लोकों में जाती है तो वो शरीर को साथ नहीं लेके जाती, निमित्त बना रखा है इस शरीर को, रथ के समान प्रयोग कर रहे हैं, इस शरीर रूपी रथ का प्रयोग किया एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जब वहां पहुंच गए तो उस रथ को छोड़ दिया, जरूरत नहीं रही। यहां से आप ट्रेन में बैठे कलकत्ता पहुंच गए तो क्या, क्योंकि वो ट्रेन कलकत्ता लेके गई हमें, तो क्या उसी में बैठे रहेंगे, गंतव्य पे पहुंच गए छोड़ो, अगला वाहन लेंगे, कोई टैक्सी लेंगे, कुछ रिक्शा लेंगे, कुछ ना कुछ लेंगे, जिस वाहन में यहाँ से हम कलकत्ता बॉम्बे पहुंचे थे उस वाहन को हम छोड़ देंगे। तो ये शरीर भी इसी प्रकार से एक रथ है, एक माध्यम है। क्या ट्रेन से हमारा संबंध है, हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, क्या हमारी है ट्रेन, वो हमने तो किराया दिया है, एक निश्चित दूरी तय करनी है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो धक्के मार के निकाल देंगे जिसकी वो जगह है, जिसने आगे वो टिकट की रिजर्वेशन कराई है, वो कहेगा भैया खड़े हो जाओ, मेरी सीट है ये, आप उस सीट पे बैठ नहीं सकते। अगर आप ज़बरदस्ती बैठोगे तो दो काम होंगे, या तो झगड़ा होगा, नहीं, और झगड़े कितने होते ही हैं ट्रेन में, और यहाँ टीटी आएगा आपको जुर्माना लगा देगा। आप उस जगह पे बैठे नहीं रह सकते, एक बार यात्रा खत्म, आपका अधिकार उस वाहन पर खत्म हो गया। तो इस उदाहरण से मातली ने जो महाराज याति को बताया कि देखो कोई संबंध ही नहीं है, वाहन की तरह प्रयोग किया, गंतव्य पे पहुंचे, बात खत्म हो गई। और दूसरा उन्होंने कारण बताया कि देखो ये शरीर पंचभूत से बना है। कौन से हैं पांच भूत, पांच पदार्थ कौन से हैं? जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, है ना, ये पांच पदार्थ हैं। भगवान भगवत गीता में बता भी रहे हैं कि जो पांचों पदार्थ हैं मेरी शक्ति हैं, ये पांच पदार्थ मुझसे उत्पन्न हुए हैं। भागवतम में कई स्थान पर, तीसरे स्कंद में भी आप देखेंगे तो कई स्थान पर वर्णन आ रहा है कि ये पांच जो भूत हैं, ये पांच पदार्थ हैं, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो मातली ने महाराज याति को बताया कि देखो ये शरीर पांच भूत से बना, और वो पांच भूत से बना शरीर जब उसमें से आत्मा निकल जाती है तो वापस वो पांच भूतों में मिल जाता है, नहीं, वापस पांच भूतों में जाके मिल जाता है, वो बात खत्म हो गई। और जब वो पांच भूतों में मिल गया, पांच भूतों से एकाकार हो गया, और जब जो जीव है, जो आत्मा है, वो ऊंचे या नीचे लोकों में जाती है, तो उस जीव को पांच भूतों से बना हुआ एक और शरीर मिल जाता है। तो पांच भूतों से शरीर लिया, वापस पांच भूतों को शरीर दिया, और फिर पांच भूतों से शरीर ले लिया, तो क्या नुकसान हुआ? जहां से जो चीज ली उसको वापस करके दूसरी चीज ली। तो इस तरह से मातली ने समझाया कि ये जो शरीर है, शरीर से कुछ संबंध नहीं है। अगर तो ये प्रश्न है, गुह्यम् आख्याति पृच्छति, गहरा प्रश्न पूछा। गहरा प्रश्न पूछने जो सामाजिक गहरे जो रहस्य हैं और जो आध्यात्मिक रहस्य हैं, उसमें एक फर्क है उसके अंदर। जब हम किसी को अपने मन की बात बताते हैं, कोई रहस्य बताते हैं भौतिक, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? किसी को बताना बोलते हैं, नहीं बोलते देखो किसी को बताना मत, अगर आपने बताया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जब आध्यात्मिक रहस्यों की बात होती है तो आध्यात्मिक रहस्य बहुत व्यापक स्तर पर उसका प्रचार किया जाता है, और जितना ज़्यादा लोगों को वो रहस्य के बारे में बताए तो श्रोता और वक्ता दोनों को लाभ होता है। जैसे हमने पद्म पुराण से ये पढ़ लिया, पद्म पुराण में लिखा किस लिए? ताकि हम सब उसको पढ़ पाए कि एक सज्जन व्यक्ति ने दूसरे अच्छे व्यक्ति से आध्यात्मिक प्रश्न पूछा, और वो आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर बहुत ही लाभकारी है, तो क्यों ना सबको बताया जाए। एक बार साउथ इंडिया में एक बहुत ही महान संत है, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो उनके गुरु ने कहा कि देखो मैं तुम्हें मोक्ष का मंत्र देना चाहता हूँ, तो बहुत ही अच्छे भक्त हो, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा, एक बार बोलने से ही वैकुंठ धाम, सीधा ट्रेन की टिकट। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम ये मंत्र किसी को नहीं बता सकते। अगर तुमने ये मंत्र किसी को बता दिया तो तुम्हें फौरन नरक जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हाँ गुरुदेव बताइए। तो गुरु ने उन महात्मा के कान में वो मोक्षदायी मंत्र प्रदान कर दिया। तो उस महात्मा ने क्या किया, वो मंत्र सुन के वो मंदिर के गुंबद पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्ला के लोगों को वो मंत्र बता दिया। गुरु को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा कितना बेवकूफ है, मैंने मना किया था कि किसी को मत बताना, मैंने मना किया था और तुमने ढिंढोरा पीट दिया, अब तुम्हें नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसने वो महात्मा ने कहा, महात्मा ने क्या कहा कि मैं मुझे नरक जाना मंजूर है, लेकिन कम से कम हजारों लोगों का तो कल्याण हो जाएगा। तो जो आध्यात्मिक रहस्य हैं वो लोगों को बताने से सबका कल्याण होता है। तो क्या वो मंत्र सबको बताने से वो महात्मा नरक चले गए? नहीं, गुरु उन्हें गुरु का और भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनके गुरु ने कहा कि वास्तव में आध्यात्मिकता को, परोपकार को तुम ही समझ सकते हो, तुम ही जान सके हो और कोई नहीं जान सका। सो भौतिक रहस्यों को हम लोग छुपाना चाहते हैं, आध्यात्मिक रहस्यों को हम लोग बताना चाहते हैं लोगों को कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कैसे की जा सकती है, क्या कार्य व्यक्ति के लिए सबसे अधिक कल्याणकारी है, ये बताना, ये आध्यात्मिक लाभ, ये जो आध्यात्मिक रहस्य है इसको जिसे भी पता चल जाए वो अपने पास छुपा के नहीं रखता। वो ये सोचता है कि मुझे तो मिल गया, ये पारस पत्थर से भी महत्वपूर्ण जो वस्तु, अब मैं इसको अपने पास कैसे रख सकता हूँ, मुझे इसको दूसरों को बताना चाहिए। गुह्यम आख्याति प्रच्छति। तो जो आध्यात्मिक रहस्य हैं वो अपने पास छुपा के नहीं रखे जाते, वो दूसरों को बताए जाते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रहस्य छुपा के रखता है, दूसरों को नहीं बताता, वो खुद भी समय के प्रभाव से, भगवान की कृपा के अभाव से, वो भी उसको भूल जाता है, समय बीतने के बाद याद नहीं रहता। आप लोग खुद भी सोच के देख लीजिए, आपने इतनी आध्यात्मिक बातें सुनी, क्या सब याद हैं? नहीं याद। क्यों याद नहीं है? क्योंकि आपने जो रहस्य सुने आपने किसी को बताने की कोशिश नहीं की। कोई सुनना नहीं चाहता, आप दीवारों को सुनाओ। कोई सुनना नहीं चाहता, आप पेड़ को सुनाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई सुनना नहीं चाहता, आप दूसरे भक्त के घर में जाओ और उससे वार्तालाप करो कि मैंने ये सुना था, मुझे ये समझ में आया सुनने से। नहीं, आप दूसरे भक्तों के घर में जाके एक दूसरे से आध्यात्मिक जीवन के बारे में जो आपने सुना या जो आपने पढ़ा, आप उसको दूसरे भक्त को बताओगे। कोई व्यक्ति नहीं सुनना चाहे ना सुने, भक्त हमेशा सुनने के लिए तैयार रहेगा। आप लोग भी तो सब सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हो, आप में सुनने की इच्छा है तभी तो आए हो आप। इसी तरह से आप दूसरे भक्तों के पास जाए और उनको बोले मुझे कुछ बताएं, और आप भी उनको जो आपने सीखा, जो आपने सुना या पढ़ा या जो भी आपने उसको अपने जीवन में उतारा, वो दूसरे भक्तों को बताएं कि मैंने ये सुना था, इसको मैंने अपने जीवन में इस प्रकार से उतारा। अगर हम ऐसा करेंगे तो इसको, ऐसा करने से हमें बहुत ही सुख और शांति का अनुभव होगा। भगवान कृष्ण भगवद गीता में इसकी पुष्टि कर रहे हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम, बोधयंता परस्परम। आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करो, आध्यात्मिक चर्चा करो। कथ्यम तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति चारमन्ति चा। अगर आप मेरे बारे में आपस में बात करोगे, आध्यात्मिक ज्ञान की आपस में चर्चा करोगे, तो तुष्यन्ति चा रमन्ति चा, आपको बहुत ही संतोष, बहुत ही सुख का अनुभव होगा। भौतिक रहस्यों को छुपाएं तो प्रॉब्लम, बताएं तो प्रॉब्लम। छुपाएं तो मन बेचैन रहता है कि देखो तो सही, दूसरे को बता के क्या क्या होगा, वो क्या करेगा। आध्यात्मिक जीवन में ऐसा कुछ भी रुकावट नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है। जो भी आप सुन रहे हो आध्यात्मिक जीवन में, वो आप दूसरों को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बता सकते हो। उससे आपको लाभ ही होगा, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। आध्यात्मिक जीवन में का सबसे गहरा रहस्य क्या है? क्या है आध्यात्मिक जीवन का सबसे गहरा रहस्य? भक्ति मतलब आध्यात्मिक जीवन क्या है, जो सबसे गहरा रहस्य जिसको आप कह सकते हो? आध्यात्मिक जीवन का सबसे गहरा रहस्य है भगवान के दिव्य नामों का जप करना। यह सबसे गहरा रहस्य है। भक्तों का संग जो है वो प्रेरणा का स्रोत है, आपको प्रेरणा देता है, आपको उत्साह दिलाता है कि आप जो है भगवान के दिव्य नामों का जप करें। सो भगवान के दिव्य नामों का जप करना इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। इससे बड़ा रहस्य और कोई नहीं है। और भगवान के दिव्य नाम कौन से हैं, जिन नामों का कीर्तन करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन इस रहस्य को हम लोग मुक्त हस्त से, बिल्कुल बिना किसी सोच विचार के, उचित अनुचित पात्र कुपात्र का विचार के बिना, सबको हम मुक्त हस्त से इसका वितरण कर रहे हैं। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है, सबसे गहरा। और क्या हमने इसको छुपा के रखा? हमने इसको छुपा के नहीं रखा। प्रभुपाद ने इतने प्रभुपाद दयालु थे कि जहां पे कोई सुनना भी नहीं चाह रहा था, जैसे माता जी ने कहा कि कोई सुनना ही नहीं चाह रहा, यहां पर तो हिंदुस्तान में और आपके आसपास फिर आपको दो चार पांच लोग मिल जाएंगे जो आपकी बात सुन लेंगे, आपको चाहे सम्मान दिखाने के लिए, मन नहीं कर रहा लेकिन चलो बड़े हैं, बुरा ना मान जाए, बात सुन लेंगे। लेकिन प्रभुपाद ने जाकर किन लोगों को सुनाया? प्रभुपाद ने ऐसे लोगों के पास गए, ऐसे लोगों को ये गूढ़ रहस्य सुनाया जिनके मन में ना तो प्रभुपाद के लिए कोई सम्मान की भावना थी और ना ही वो उनकी कुछ आध्यात्मिकता में रुचि थी, और जो हमेशा नशे में रहते थे। ऐसे लोगों को भी जाकर प्रभुपाद ने, जो सबसे गहरा रहस्य है, सबसे गहरा रहस्य प्रभुपाद ने वहां जाकर लोगों को बताया। तो जब प्रभुपाद, जो लोग सुनना भी नहीं चाहते, जिनके मन में उनके लिए सम्मान नहीं था, जब प्रभुपाद उनको भी करुणावश जाकर बता सकते हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या आप दो बंतों को जाकर नहीं बता सकते? जो आप सुना, जो आपको अच्छा लगा, क्या आप और लोगों को जाके बताना आपका कर्तव्य है कि नहीं है? अगर आप घर से बाहर निकल के अपने मित्रों से, पड़ोसियों से आप ये गूढ़ रहस्य उनके साथ बांटेंगे, तो उससे उनको अगर लाभ होगा या नहीं होगा दूर की बात है, आपको अवश्य लाभ होगा, क्योंकि आपने इस गूढ़ रहस्य को भगवान के नाम के बारे में दूसरों को बताने का प्रयास किया। सो शिला रूपक गोस्वामी ने कहा कि जिस प्रकार भौतिक समाज में आप लोगों के साथ संबंध बना रहे हैं, छह प्रकार से आदान प्रदान कर रहे हैं, वही छह कार्य आप भक्तों के साथ कीजिए। जब आप भक्तों के साथ ये छह कार्य करेंगे तो इससे आपको बहुत आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। आपके इर्द गिर्द एक सुरक्षा का घेरा बन जाएगा। आप आध्यात्मिक जीवन में कई बार ऐसा होता है कि भगवान का नाम जपने में या भगवत गीता इत्यादि ग्रंथों को पढ़ने में कई बार इतना उत्साह नहीं रहता, लेकिन जब आप भक्तों के साथ रहेंगे, भक्तों से घिरे रहेंगे, तो उनके साथ रहते हुए आपका वो उत्साह वापस आ जाएगा। सो भक्तों के संग में रहना और भक्तों के साथ ये छह कार्यों को करना, ये हमारे लाभ में है। और जब तक हम भक्तों के साथ ये छह कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमें भौतिक समाज के साथ छह कार्य, जो प्रीति के लक्षण है, जो प्रेम के लक्षण है, वो छह कार्य हमें भौतिक समाज के लोगों के साथ करने पर मजबूर होना पड़ेगा। सो अगर हम उस मजबूरी से बचना चाहते हैं, तो जो आदान प्रदान हम भौतिक लोगों के साथ कर रहे हैं, वो आदान प्रदान हमें भक्तों के समाज में करना चाहिए। अनेक वैष्णव उत्सव आते हैं, गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, बलराम जयंती, प्रभुपाद आविर्भाव दिवस, प्रभुपाद तिरुभाव दिवस। जिस प्रकार कल भक्ति विनोद ठाकुर और गदाधर पंडित का तिरुभाव है, तो जो भक्ति में गंभीर हैं उन्हें भक्ति विनोद ठाकुर और गदाधर पंडित की कृपा प्राप्त करने के लिए कल 12 बजे तक उपवास रखना चाहिए। 12 बजे के बाद अन्न ग्रहण कर सकते हैं उनकी पूजा करके। सो, अगर हम इस प्रकार इन उत्सवों का हम ये उत्सव मनाएंगे भक्तों के साथ मिलकर, और भक्तों के साथ हम आदान प्रदान करेंगे, तो आप अनुभव कर पाएंगे कि आपकी भक्ति दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगी। आज आप अगर 15 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चल रहे हैं, फिर आप 1000 किलोमीटर घंटे की स्पीड से भागेंगे, तो क्या एक्सीडेंट होगा? एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द सुरक्षा कवच है, भक्त आपके इर्द गिर्द रहेंगे और बार बार आपको उत्साह दिलाएंगे कि आप भक्ति में बने भी रहें और भक्ति में आगे भी बढ़ें और दूसरे लोगों को भक्ति में जोड़ें। ठीक है, हरे कृष्णा। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सो, प्रश्न है कि अगर हम भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार से भगवान की सेवा है? भगवान का नाम जपना किस प्रकार से भगवान की सेवा, इसको कहा जा सकता है? सो, इसके कई उत्तर हैं। पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि जैसे प्रश्न उठाया गया था चैतन्य महाप्रभु से, पूछा था कि कृष्ण तो हमारे स्वामी हैं, तो स्वामी का नाम ही क्यों लेना चाहिए? स्वामी का नाम कोई लेता है? जैसे स्त्रियां हैं, वो अपने पति का नाम लेती हैं? नहीं लेती हैं, है ना? तो कृष्ण हमारे स्वामी हैं, स्वामी का नाम ही क्यों लिया जाए? तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया था कि स्वामी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर स्वामी बोले कि आप मेरा नाम लो, मुझे अच्छा लगता है, तो उस समय स्वामी का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ को बोले कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अगर स्त्री बोले नहीं नहीं मैं तो आपके नाम से नहीं बुलाऊंगी, तो हस्बैंड को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा, है ना? अगर स्वामी सामने से बोले कि आप मेरा नाम ले सकते हो, तो फिर अगर नाम लिया जाए तो उससे स्वामी को प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार भगवान जो है भगवद गीता में कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, है ना? भगवान कह रहे हैं हमेशा मेरे नामों का स्मरण करो, मेरे दिव्य नामों का जप करो। सो, क्योंकि भगवान हमें ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, हम भगवान की आज्ञा की पूर्ति कर रहे हैं, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और ये भगवान की सेवा है। दूसरा, इसका जो भगवान का जो नाम जपना किस प्रकार भगवान की सेवा है, उसका एक उत्तर ये भी है कि भगवान को अपना नाम सुनना अच्छा लगता है। भगवान के जितने भी नाम हैं, भगवान के किसी गुण या लीला से जुड़े हुए हैं। यशोदा माई के पुत्र हैं यशोदा नंदन, गिरिवरधारी है क्योंकि गोवर्धन उठाया था, कृष्ण है क्योंकि सर्वाकर्षक है, सबसे अधिक आकर्षक है। तो अगर हम कृष्ण बोलते हैं तो ये भगवान की स्तुति है कि हे भगवान आप सबसे आकर्षक हैं। तो जब हम कृष्ण बोलते हैं तो ये कृष्ण जो नाम है ये भगवान की स्तुति है। जब हम कृष्ण बोलते हैं भगवान को सुनना अच्छा लगता है, अगर कोई आपकी तारीफ करे आपको अच्छा लगता है। इसी प्रकार भगवान भी एक व्यक्ति है, सनातन शाश्वत सच्चिदानंद व्यक्ति हैं भगवान। अगर भगवान की हम तारीफ करें तो भगवान को अच्छा लगता है। तो जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम इस मंत्र का जप करते हैं तो भगवान को अच्छा लगता है। दूसरा दृष्टिकोण है, जब हम हरे हरे कृष्णा में हरे कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तो जब हम हरे बोलते हैं तो भगवान कृष्ण को अच्छा लगता है, जब हम कृष्ण बोलते हैं तो श्रीमती राधा रानी को अच्छा लगता है। तो जब भगवान कृष्ण को अच्छा लगता है, जब श्रीमती राधा रानी को अच्छा लगता है, दोनों को अच्छा लगता है। तो जिस चीज़ से स्वामी स्वामिनी को सुख पहुँचे वो सेवा नहीं है तो और क्या है। इसीलिए हम भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करते हैं जिससे श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण दोनों को सुख और प्रसन्नता का अनुभव हो। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के दिव्य नामों का जप करना भगवान की सेवा है। एक तीसरा दृष्टिकोण, क्यों भगवान के नामों का जप करना भगवान की सेवा है। तीसरा उत्तर इसका ये है कि भगवान ने इस सृष्टि की, भौतिक सृष्टि की रचना क्यों की है। भगवान ने भौतिक सृष्टि की रचना की है जिससे बद्ध जीवों को वापस भगवत धाम अपने घर जाने का अवसर प्राप्त हो, और अपने घर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है भगवान के दिव्य नामों का जप करके। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत, भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का जप करके बद्ध जीव भगवत धाम जा सकता है। तो जिस कार्य को करके भगवान के उद्देश्य की पूर्ति हो, क्या वो सेवा है या नहीं, वो सेवा है। तो अगर हम भगवान के दिव्य नामों का जप करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उससे हमारे शुद्धिकरण होता है और हम वापस भगवत धाम जाते हैं और भगवान के उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है जिस उद्देश्य से भगवान ने इस भौतिक जगत को बनाया। इसीलिए भगवान के दिव्य नामों का जप करना भगवान की सेवा कही जाती है। ठीक है, और किसी का प्रश्न? सो पैर छूना अच्छा है कि खराब है, प्रश्न ही है। पैर छूने चाहिए कि नहीं छूने चाहिए? पैर छूने चाहिए भौतिक समाज में। क्यों छूने चाहिए पैर? क्योंकि इससे आदत पड़ती है झुकने की। अगर पैर नहीं छुएंगे तो बड़ों के सामने झुकने की भावना खत्म हो जाएगी, उस लिहाज से अच्छा है। लेकिन जो भक्त हैं, भक्तों को भक्तों के सामने प्रणाम करना चाहिए, भक्तों की चरण रज लेने चाहिए, भक्तों का आशीर्वाद लेना चाहिए। भौतिक लोगों के पैर नहीं छूने चाहिए। भौतिक लोगों के पैर छूके भौतिक गुण लेके फायदा क्या होगा? सो भौतिक समाज में पैर छूने चाहिए अच्छा है, उससे विनम्रता का भाव आएगा। लेकिन भक्त जो है, भक्त अगर किसी दूसरे भक्त के सामने प्रणाम करता है तो प्रणाम करने का तरीका पैर छूना नहीं है, और प्रणाम करने का तरीका क्या है, वो उसके सामने अपना माथा जमीन पर लगाता है, जो कि उससे कई गुना अधिक विनम्रता का सूचक है। और आजकल तो लोग पैर छूते भी नहीं है, लोग पैर छूने के लिए पैर कहाँ तक छूते हैं आज तक? लोग घुटने तक ही तो जाते हैं, पैर तक तो पहुंच ही नहीं रहा आजकल कोई। तो अगर कोई पैर छू रहा है तो अच्छी बात है भौतिक समाज में, लेकिन आध्यात्मिक जगत में उससे भी ज़्यादा अच्छी रीति बताई जाती है कि अपने मस्तक को, जो कि पूरे शरीर में सबसे उत्तम वस्तु है, उत्तम चीज है पूरे शरीर के अंदर, उसको हम और हमारे अहंकार का सूचक है मस्तक, उसको हम दूसरे भक्त के सामने जमीन पर छुआते हैं। यह विनम्रता का पराकाष्ठा है, वो अच्छा तरीका है। दूसरे के पैर छूना के भाई वैसे तो कुछ करने रहा, चल इसी का माल चोरी कर लूं, उसी के दूसरों के पैर छूते रहो, वो अच्छा बात नहीं है। प्रणाम करो दूर से, वो अच्छा है, उससे भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा, और इससे आपके मन में चोरी की भावना भी नहीं आएगी। कुछ आप कहना चाह रहे थे? हाँ, है ना। सो पैर ऐसे, तो मतलब पहले के लोग थोड़े जागरूक थे, और अब कोई किसी को बताता भी नहीं है, बताए किसको, कोई सुनना नहीं चाहता, तो धीरे धीरे वो विचारधाराएं खत्म होती जा रही हैं। हम लोग पैर से घुटने पे आ गए हैं और धीरे धीरे मुंह पे आ जाएंगे, नहीं ये छोटे हैं बड़ों के मुंह पे थप्पड़ मारेंगे, जैसे पाश्चात्य देशों में हो रहा है ना। पाश्चात्य देशों में कोई किसी के सामने झुक रहा है? हाँ, वो तो अपने माँ बाप को भी जॉन अपने उनके नाम से बुलाते हैं, हाँ डैड डैड हो जाओ तुम, हाँ ऐसे बोलते हैं उनको, उसका क्या फायदा है। सो, इसीलिए भक्तों के समाज में रहना आवश्यक है, जिससे कि आप अच्छी आदतें अपने जीवन में उतार पाओ। ठीक है, अभी बहुत समय हो गया, इसको हम यहीं पर विराम देते हैं।